नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कार्ल मार्क्स की ग्रुंडर से राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना के निर्माण काल का विशाल, अधूरा और अत्यंत प्रभावशाली मसौदा है। इसे मार्क्स ने 1857 से 1858 की सर्दियों में लिखा, जब वे पूंजीवादी उत्पादन, धन, श्रम और संकट के संबंधों को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास कर रहे थे। यह कोई सुगठित पाठ्य पुस्तक या प्रकाशित करने के लिए तैयार पुस्तक नहीं है, बल्कि 7 नोटबुकों में दर्ज विचार प्रयोगों, रूपरेखाओं और तर्कों का संग्रह है। फिर भी इसमें वे कई अवधारणाएं उभरती हैं जिन्हें मार्क्स ने बाद में कैपिटल में अधिक क्रमबद्ध रूप दिया। पेंगुन क्लासिक संस्करण मार्टिन निकोलस के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित इस कठिन पाठ को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाता है। पुस्तक का उद्देश्य केवल अर्थव्यवस्था का वर्णन करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि पूंजीवादी समाज में उत्पादन, विनिमय और सामाजिक संबंध किस तरह एक दूसरे को आकार देते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ मार्क्स का चिंतन अपनी खोज की अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए तर्कों की संभावनाएं और तनाव दोनों खुले रूप में सामने आते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, धन से पूंजी तक आर्थिक रूपों के पीछे सामाजिक संबंध। ग्रुंडरसे का आरंभ धन, विनिमय और मुद्रा की जांच से होता है, लेकिन मार्क्स इन्हें केवल तकनीकी आर्थिक उपकरण नहीं मानते। उनका मूल प्रश्न यह है कि वस्तुओं का विनिमय करने वाले व्यक्तियों के बीच कौन से सामाजिक संबंध काम कर रहे हैं। बाजार में अलग अलग उपयोग वाली वस्तुएं एक साझा मूल्य रूप में तुलनीय बनती हैं। मार्क्स के लिए समानता प्रकृति की सीधी देन नहीं है, बल्कि ऐसे समाज की उपज है जहाँ श्रम उत्पाद वस्तुओं के रूप में सामने आते हैं। मुद्रा इस प्रक्रिया को सरल भी बनाती है और अधिक रहस्यमय भी, क्योंकि सामाजिक श्रम का संबंध एक बाहरी वस्तु की शक्ति जैसा दिखने लगता है। आगे चलकर मुद्रा तब पूंजी बनती है जब उसका उपयोग केवल खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अधिक मूल्य हासिल करने के लिए किया जाता है। इस परिवर्तन से उत्पादन का लक्ष्य मानवीय जरूरतों की पूर्ति से हटकर मूल्य की वृद्धि बन जाता है। पुस्तक का तर्क पाठक को रोजमर्रा के बाजार व्यवहार के पीछे देखने को कहता है। कीमत, नकद भुगतान और व्यापार तटस्थ तथ्य नहीं है, वे उस व्यवस्था के रूप है जिसमें उत्पादन करने वालों की गतिविधियां बाजार की शक्तियों के सामने स्वतंत्र और नियंत्रक प्रतीत होती हैं। दूसरा, जीवित श्रम, अधिशेष श्रम और लाभ की उत्पत्ति। मार्क्स के विश्लेषण में पूंजीवादी लाभ का प्रश्न केंद्रीय है। ग्रुंडरसे यह दिशा स्पष्ट करती है कि लाभ को केवल व्यापारिक चतुराई, जोखिम या मशीनों की उत्पादकता से नहीं समझा जा सकता। उत्पादन में श्रमिक अपनी श्रम शक्ति बेचता है और उसका कार्य पूंजी के लिए नया मूल्य पैदा करता है। श्रम दिन का एक हिस्सा उस मूल्य के बराबर हो सकता है जो श्रमिक के जीवन निर्वाह और मजदूरी के लिए जरूरी है। शेष समय में किया गया श्रम अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है जिस पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। यही अधिशेष श्रम की अवधारणा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्तिगत नियोक्ता की मंशा समान होती है, बल्कि प्रतिस्पर्धा और लाभ की आवश्यकता ऐसी संरचनात्मक स्थितियां बनाती है जिनमें काम की तीव्रता, कार्य दिवस, उत्पादकता और मजदूरी लगातार विवाद के विषय बनते हैं। मार्क्स श्रम को केवल लागत नहीं बल्कि पूंजी के विस्तार का सक्रिय स्रोत मानते हैं। साथ ही यह प्रक्रिया श्रमिक की रचनात्मक क्षमता को उस शक्ति में बदल सकती है जो उसके अपने ऊपर बाहरी नियंत्रण बनकर लौटती है। इसलिए पुस्तक लाभ के नैतिक मूल्यांकन से आगे जाकर उसके सामाजिक तंत्र की व्याख्या करती है। तीसरा, मशीन, स्वचालन और सामान्य बुद्धि का विरोधाभास। ग्रुंडरसे के प्रसिद्ध मशीन संबंधी अंशों में मार्क्स तकनीकी विकास को दोहरे रूप में देखते हैं। मशीनें उत्पादन की क्षमता बढ़ाती हैं, आवश्यक श्रम समय घटा सकती हैं और मनुष्य को कठिन दोहराव वाले काम से मुक्त करने की भौतिक संभावना पैदा करती हैं। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में तकनीक का तत्काल उपयोग लाभ और प्रतिस्पर्धा की शर्तों से तय होता है, इसलिए मशीन श्रमिक के लिए केवल सुविधा नहीं रहती, वह काम की गति बढ़ाने, कौशल को सीमित करने या रोजगार को अस्थिर बनाने का माध्यम भी बन सकती है। मार्क्स ज्ञान, विज्ञान और सामूहिक सामाजिक सहयोग की बढ़ती भूमिका को सामान्य बुद्धि के रूप में समझते हैं। उत्पादन अब केवल किसी एक व्यक्ति के हाथ के काम का परिणाम नहीं, बल्कि संचित ज्ञान, संगठन और सामाजिक अवसंरचना पर निर्भर होता जाता है। यहाँ एक तनाव पैदा होता है। यदि समाज की उत्पादक शक्ति बढ़ रही है तो संपत्ति और अवकाश के नए रूप संभव है। फिर भी मूल्य का माप श्रम समय बना रहे तो वही प्रगति बेरोजगारी, असमानता और नियंत्रण को बढ़ा सकती है। यह खंड आज की स्वचालन बहस का तैयार उत्तर नहीं देता, पर तकनीक को तटस्थ मानने के बजाय उसके स्वामित्व और सामाजिक उद्देश्य पर प्रश्न उठाने का मजबूत ढांचा देता है। चौथा, उत्पादन, वितरण और विनिमय की परस्पर निर्भरता। मार्क्स उत्पादन को आर्थिक जीवन की निर्णायक प्रक्रिया मानते हैं, पर ग्रुंडरिसे में वे इसे वितरण, विनिमय और उपभोग से अलग थलग नहीं रखते। उत्पादन के लिए कच्चा माल, औजार, श्रम शक्ति, कानूनी अधिकार और बाजार चाहिए। उत्पाद बनने के बाद उसका वितरण होता है, विनिमय के माध्यम से वह अलग स्थानों और लोगों तक पहुंचता है, और उपभोग में उसका उपयोग पूरा होता है। इन चरणों को स्वतंत्र मान लेने से अर्थव्यवस्था की वास्तविक गति छिप जाती है। उदाहरण के लिए, मजदूरी वितरण का रूप है, लेकिन वह उत्पादन में श्रम शक्ति को पुनः उपलब्ध कराने की शर्त भी है। उपभोग व्यक्तिगत आवश्यकता जैसा दिख सकता है, फिर भी वह उत्पादन से निर्मित वस्तुओं और आय पर निर्भर है। इसी तरह बाजार उत्पादन को केवल बाद में प्रभावित नहीं करता, बल्कि उत्पादकों के निर्णयों को पहले से आकार देता है। मार्क्स का लक्ष्य यह साबित करना नहीं कि हर चीज का एक ही कारण है। वे एक ऐसी समग्रता का विश्लेषण करते हैं जिसमें अलग आर्थिक क्षेत्र एक दूसरे की शर्त बनते हैं। यह दृष्टि उन व्याख्याओं से अलग है जो संकट को केवल मांग की कमी, केवल वित्त या केवल उत्पादन की समस्या मानती हैं। ग्रुंडरिसे संबंधों की श्रृंखला और उनके अंतर्विरोधों को एक साथ देखने की पद्धति सिखाती है। अंत में इतिहास, पूर्व पूंजीवादी रूप और पूंजी की सीमाएं। ग्रुंडरिसे में मार्क्स पूंजीवाद को मानव समाज का शाश्वत या प्राकृतिक रूप नहीं मानते। वे उन ऐतिहासिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं जिनमें उत्पादक अपने काम के साधनों, भूमि या सामुदायिक संसाधनों से अलग हुए और बाजार पर निर्भर श्रम शक्ति के विक्रेता बने। पूर्व पूंजीवादी समाजों पर उनके नोट्स विविध संपत्ति रूपों और समुदाय के संबंधों की ओर संकेत करते हैं। उनका उद्देश्य अतीत को आदर्श बनाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि निजी संपत्ति, मजदूरी, श्रम और पूंजी के आधुनिक संबंध इतिहास में बने हैं, इसलिए वे बदल भी सकते हैं। पूंजी की एक विशेष शक्ति यह है कि वह उत्पादन को लगातार बदलती, बाजारों का विस्तार करती और पुरानी सीमाओं को तोड़ती है। लेकिन यही विस्तार अपने विरोधाभास भी पैदा करता है। लाभ के लिए उत्पादन सामाजिक जरूरतों और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ टकरा सकता है। उत्पादकता बढ़ने पर भी धन और निर्णय का नियंत्रण संकुचित रह सकता है। मार्क्स के लिए संकट कोई आकस्मिक खराबी मात्र नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की संभावित अभिव्यक्ति है जिसमें उत्पादन सामाजिक है, लेकिन उसका नियंत्रण और लाभ निजी रूप में संगठित है। इस ऐतिहासिक दृष्टि से पुस्तक पाठक को वर्तमान आर्थिक संस्थाओं को अपरिवर्तनीय मानने से रोकती है। निष्कर्ष में, ग्रुंडरिसे उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो मार्क्स के विचारों को केवल लोकप्रिय नारों, राजनीतिक विवादों या कैपिटल के संक्षिप्त परिचयों तक सीमित नहीं रखना चाहते। राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, श्रम अध्ययन, तकनीक और पर्यावरण संबंधी बहसों के गंभीर विद्यार्थी इससे विशेष लाभ पा सकते हैं। यह आरंभिक पाठक के लिए सहज पुस्तक नहीं है। इसकी भाषा कई जगह नोट्स जैसी है, विषय अचानक बदलते हैं और तर्कवाद की रचनाओं जितने सुव्यवस्थित नहीं है। इसलिए इसे धीरे धीरे अच्छे परिचय या सहायक टिप्पणियों के साथ पढ़ना अधिक फलदायी होता है। इसकी बौद्धिक उपयोगिता इसी कठिनाई में निहित है। यहाँ पाठक तैयार सिद्धांत का केवल निष्कर्ष नहीं पढ़ता, बल्कि मूल्य, श्रम, तकनीक, इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सिद्धांत बनते हुए देखता है। कैपिटल की तुलना में ग्रुंडरिसे अधिक प्रयोगशील और व्यापक है। इसमें मशीनों, ज्ञान, अवकाश, पूर्व पूंजीवादी समाजों और पूंजी की ऐतिहासिक सीमाओं पर ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें बाद के अध्येताओं ने अलग अलग दिशाओं में विकसित किया। समान विषय की व्यवस्थित अर्थशास्त्रीय पुस्तकों से इसे अलग करने वाली बात इसकी आलोचनात्मक पद्धति है। यह केवल यह नहीं पूछती कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, बल्कि यह भी पूछती है कि उसके मूल सामाजिक रूप किन मानवीय क्षमताओं को विकसित करते हैं और किन्हें सीमित करते हैं। इसीलिए यह एक चुनौतीपूर्ण पर दीर्घकालिक रूप से समृद्ध करने वाला अध्ययन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कार्ल मार्क्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।